हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 27। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुहवति ज्ञान दीपते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को समित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा परागात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह परागात्मा कहलाता है, और जो ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है तो प्रत्यगात्मा कहलाने लगता है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाएं। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्येक आत्मा ही चरम उद्देश्य है। यह प्रत्येक आत्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रियां इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती हैं, यथा कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए हैं, और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती हैं। यही कार्य प्राण वायु के व्यापार हैं, क्रियाएं हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्याप वायु से संकोच तथा प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बना रहता है, और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है, और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायु को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। तो आप ये देख सकते हैं, इसको सिंपल शब्दों में इस परपट को हम पढ़ें और समझें, जो उसका अर्थ देखिए। किसी भी योग पद्धति में, जो प्रमाणिक योग पद्धति है, उसमें बहिर्मुख जीव को अंतर्मुखी किया जाता है। बहिर्मुख मतलब जिस जीवात्मा की इंद्रियां बाहर के भोगों में लगी हुई हैं, एब्जॉर्ब हैं, लीन हैं, और ऐसा जीवात्मा अपने बारे में नहीं समझ पाता, जिसे कहते हैं मणि ग्रीवा न्याय। हमारे गले में मणि रहती है, फिर भी हम ढूंढ रहे हैं उसको पूरे जगत में। ऐसे ही भगवान हमारे हृदय में है और भगवान से हमारा नित्य संबंध भी है, लेकिन भोगों में आसक्त होने के कारण और भोग की क्रियाओं में लगे रहने के कारण जीवात्मा बहिर्मुख हो जाता है। जैसे इसमें बताया गया है, प्रत्येक आत्मा, यानी प्रत्येक आत्मा वो आत्मा है जो इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है, और जब इंद्रिय भोग में आसक्त होता है तो वह पराग आत्मा कहलाता है। तो उद्देश्य यह है पराग आत्मा से प्रत्येक आत्मा लेना, यानी कि बहिर्मुख जीवात्मा योग पद्धति का अनुसरण करके, जिसमें कि प्राणवायु को नियमित किया जाता है, उसके द्वारा अपनी क्रियाओं को अंतर्मुखी करे। पहला इसमें यम होता है, नियम होता है, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, ऐसा करके इसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जिसके द्वारा ये, लेकिन विधि जो है वो मैकेनिकल विधि है। प्रायः हमारा मन बहुत चंचल होता है तो यम, नियम, आसन इत्यादि के द्वारा रजगुण को निकाला जाता है, धीरे धीरे सतगुण में स्थित हो जाता है, और फिर परमात्मा का ध्यान करने का प्रयास किया जाता है जो भगवान हृदय में रहते हैं। लेकिन कृष्ण भावना की प्रक्रिया में सीधे ही भगवान से संपर्क होता है, नाम जप के माध्यम से, भगवान की लीलाओं के माध्यम से, भगवान की शिक्षाओं को सुन करके। तो इन दोनों में थोड़ा इस बात का अंतर है। नेक्स्ट 28। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसित व्रताः। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या के द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा, अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। एक चीज तो हम समझ रहे हैं कि भोग में लगे रहने वाले जीव को प्रबुद्ध नहीं कहा जा रहा है, और किसी भी यज्ञ के तरीके के द्वारा चेतना शुद्ध होती है तो उसकी बुद्धि का विकास होता है, जिससे वो अपनी वास्तविक स्थिति को समझ पाता है इस शरीर से परे। तात्पर्य देखेंगे, इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, यथा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के दातव्य संस्थान हैं। ये सब दान कर्म द्रव्यमय यज्ञ हैं। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए चंद्रायन तथा चातुर्मास जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरणार्थ, चातुर्मास रखने वाले वर्ष के 4 मासों में बाल नहीं काटता, न ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है, यानी कुछ विशेष वस्तुएं नहीं खाता, और न दिन में 2 बार खाता है, न निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं, यथा पतंजलि पद्धति ब्रह्म में तदत्कार होने के लिए, अथवा हठ योग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए। कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं, वे सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य तथा उपनिषद तथा यथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं, इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपर्युक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है, फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। मैं इस पूरे तात्पर्य में खाली आखिरी की जो लाइन प्रभुपाद ने बताई है वो बहुत सुंदर है, उस पर फोकस करूंगा। इस जगत में जो भी व्यक्ति क्रियाएं कर रहा है, तपस्या कर रहा है, जैसे आपने देखा द्रव्यमय यज्ञ या ज्ञान यज्ञ या योग यज्ञ, उसका उद्देश्य यही है कि सूक्ष्म या स्थूल रूप से हमें उच्चतर इंद्र तृप्ति की भावना, इंद्र तृप्ति की सुविधाएं मिले। लेकिन कृष्ण भावना इससे बिल्कुल अलग पथ है। कृष्ण भावना में साधन भक्ति के समय में भी जीवात्मा भगवान कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अन्य पद्धतियों में कोई तपस्या कर रहा है जिसके आगे जाकर के उसके खुद की इंद्र तृप्ति मिले, और यानी कि भगवान से जिसका द्वेष है वो नष्ट नहीं हो रहा, लेकिन कृष्ण भावना में साक्षात कृष्ण की सेवा की जाती है। भले ही हमारी इंद्रियां पूर्ण हो, लेकिन हमारा भाव यही है कि हम कृष्ण के नित्यदास हैं, हमारा कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना, इसलिए हम कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं। तो ये जो तरीका है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, ये भक्ति करने से ही प्राप्त होती है। जब हम भक्ति करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, चाहे हमारी चेतना कितनी भी दूषित क्यों ना हो, लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तभी हमको उच्चतर भक्ति की अवस्था प्राप्त होती है। साधन भक्ति करते करते ही आगे जाकर यही भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति में परिणत होती चली जाती है। ऐसा नहीं है कि कंबल बांटने से, लोगों को दवाई बांटने से हम भक्ति करने के अधिकारी हो जाते हैं। जैसे 2 अलग अलग रास्ते हों और उन रास्तों, मान लीजिए एक रास्ता वृंदावन जा रहा है और एक रास्ता अमृतसर जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अमृतसर पे आप बहुत बढ़िया गाड़ी से चल रहे हो तो आप वृंदावन पहुंच जाओगे। वो रास्ता ही बिल्कुल अलग है, क्योंकि इन बाकी सारे यज्ञों की अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, मैं उच्चतर इंद्र तृप्ति चाह प्राप्त करूं। लेकिन भक्ति में क्या उद्देश्य है, मैं कृष्ण की इंद्रिय को संतुष्ट कैसे करूं अधिक से अधिक, तो इसलिए ये समझना चाहिए। दूसरा चीज क्या है, भक्ति में हमारी प्रगति हमारी खुद की प्रगति से होती है, हमारे खुद के भजन से होती है, और साथ साथ इसका कंट्रोल एक श्रेष्ठतर भक्त के हृदय में भी होता है। जब हम लोग एक शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में भक्ति करते हैं तो उनकी भी इच्छा होती है कि ये भक्त जब सुनते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं तो वो प्रसन्न होते हैं, और उनके हृदय में भी स्प्रिया होती है, इच्छा होती है कि भगवान इस भक्त की रक्षा करना, इसकी इसका इस भक्त की भक्ति में प्रगति हो, तो उससे हमारा और अधिक प्रगति होती है। तो 2 प्रकार की हेल्प है, एक हमारा खुद का प्रयास और दूसरा एक महान भक्त का आशीर्वाद और उनका सदिच्छा, तो इसके द्वारा हमारी भक्ति में प्रगति होती है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि भक्ति का पथ जो है अन्य यज्ञों के द्वारा कितना उनसे कितना अलग है। टेक्स्ट नंबर 29, अपाने जुहवती प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणपान गतिर्ध्वा प्राणायाम परायण अपरे नियताहार प्राणन प्राणे सुजुहवती। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोकते हैं प्राणायाम। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण को ही प्राण में ही आहुति देते हैं। और आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे, बार बार भगवान यहाँ पे अन्य अन्य बोल रहे हैं। और शुरुआत जो श्लोक उन्होंने शुरू किया था और वो था श्लोक ब्रह्मण्य कर्माणि, क्या श्लोक है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवीर। तो ये जो श्लोक है, श्लोक क्रमांक 24, ये भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण दिखाता है, जिसके कार्य पूरी तरह से कृष्ण को समर्पित हैं और बाकी सभी के लिए भगवान बोल रहे हैं अन्य अन्य अन्य, यानी कि उनके अभी शुद्धकरण की आवश्यकता है, उनको एक भक्त की कृपा की आवश्यकता है। और जब वो कृपा को स्वीकार करेंगे तब वो भक्ति के पथ पर आगे बढ़ पाएंगे। तात्पर्य, श्वास को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियाँ इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती हैं। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। अपान वायु निम्नगामी अधोमुखी है और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायु को पूर्णतया रोक दिया जाता है तो उसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योग अभ्यास द्वारा मनुष्य आत्म सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिवान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है। ओके, यहाँ थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। इन टेक्निकल चीज़ों के बारे में तो मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ क्योंकि ये हमारा पथ नहीं है, लेकिन एक बात समझ में आना चाहिए कि योग अभ्यास का उद्देश्य, जो वाकई अष्टांग योग करते हैं, उसका उद्देश्य यही है कि अपने मन को और इंद्रियों को संयमित किया जाए। जिस प्रकार से आजकल योग की पद्धति को बताया जा रहा है कि योग करके हम शरीर को सुखी रखेंगे, सुदृढ़ रखेंगे ताकि हम उससे इंद्रिय तृप्ति कर सकें, तो ये योग का दुरुपयोग है। योग का हम उपयोग कर सकते हैं, अष्टांग योग का या हठ योग का उपयोग कर सकते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ताकि हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर सकें, सहायक हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सोचें कि उससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी। और इस समाज में या इस युग में, कलयुग में, केवल अष्टांग योग के माध्यम से आध्यात्मिक प्रगति करना प्राय असंभव है। जंगल में जाना पड़ता है, अकेले रहना पड़ता है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता है, तो ऐसा कर पाना प्राय सभी लोगों के लिए संभव है। तो इसलिए यहाँ पे इसलिए इसको आप लोग देख सकते हैं कि समझना कितना मुश्किल है और करना तो और भी मुश्किल होगा। इसलिए प्रभुपाद इसको समझा जरूर रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो कृष्ण भावना के ही स्वीकार करने की प्रेरणा आपको देंगे। इसको देखिए, किंतु भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंता बन जाता है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इंद्रियों को संयमित करने का तरीका भगवान की भक्ति में है, ये है कि हम अपनी इंद्रियों को लगातार भगवान की सेवा में लगाए रखें। जैसे मैं इस समय सोचूं कि मैं आधे घंटा कुछ नहीं बोलूंगा तो ये मुश्किल है, लेकिन मैं सोचूं कि आधे घंटे के लिए मुझे भगवद गीता का प्रवचन करना है तो ये आसान हो जाता है। ऐसे बोले कि बस चुपचाप बैठे रहो कुछ करो मत, तो ये मुश्किल होता है। लेकिन अगर कहें भाई हाथ से भगवान के मंदिर का मार्जन करो, या भगवान के लिए कुछ भोग बनाओ, या भगवान के लिए कुछ सब्जी लेने के लिए जाओ, तो इन क्रियाओं को हम करने के अभ्यस्त हैं। बस उन क्रियाओं को दिव्य करना है, और दिव्य का अर्थ है भगवान कृष्ण से संबंधित, और प्रेमा भक्ति का अर्थ है प्रेम की श्रद्धा से करना इस चीज़ को। ऐसा नहीं कि मुझे कोई पैसे मिल रहे हैं इसलिए मैं इस कार्य को करूँगा। भगवान में विश्वास है, भगवान में श्रद्धा है, इस प्रेरणा से जब हम कार्य करते हैं भगवान की सेवा के लिए, तो वो दिव्य प्रेमा भक्ति कहलाती है। तो इसीलिए हम लोगों को अलग से इंद्रियों को जीतने की आवश्यकता नहीं, अपितु अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखने का अभ्यास सीख रहा है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती हैं। जैसे अभी मैं भगवद्गीता के बारे में बोल रहा हूँ तो अपने आप ही भौतिक वस्तुओं के बारे में मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि एक इंद्रिय एक बार में एक ही कार्य कर सकती है। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, अतः वह दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता। बहुत सुंदर बात है कि एक भक्त है, वो लंबा नहीं जीना चाहते हैं, वो भक्तिमय जीवन जीना चाहते हैं। इस बात को सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, तरवह किम न जीवंती, क्या जो पेड़ हैं वो लंबे समय तक नहीं जीते। तो लंबे समय तक जीना और एक पेड़ की तरह या जानवर की तरह जीना, इससे क्या लाभ होगा। वस्तुतः ऐसे हम देखते हैं खटवांग महाराज ने, जब उनको मालूम चला कि केवल एक मुहूर्त के लिए उनका जीवन बाकी है, तो उन्होंने अपने मन को भगवान में लगाया और भगवान के धाम की प्राप्ति कर ली। तो भक्तों की भावना क्या होती है, ना तो वो शरीर में रहना चाहते हैं और ना वो शरीर से निकलना चाहते हैं, वो केवल कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, कृष्ण जिस प्रकार से उनसे सेवा करना चाहे उस प्रकार से। वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, जैसा कि भगवद्गीता में कहा क्या है, माम च यो व्यभिचारिणा भक्ति योगे न सेवते स गुणान समति त्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है वह प्रकृति के गुणों को लांग जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता और अंततः वह भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसादम को ही खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्रिय निग्रह के बिना भव बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावना व्यक्ति भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि भक्ति की शुरुआत से ही अगर इंद्रियों को हम लगातार भगवान की सेवा में लगाए रखे हैं, गुरु के मार्गदर्शन में, जिसमें उस जिस समय हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं होता लेकिन गुरु के आदेश और शास्त्र के आदेश के अनुसार हम कार्य करते हैं, उस समय भी हम दिव्य अवस्था में रहते हैं। क्या कोई प्रमाण है इसका? इह यस्य हरेण दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो व्यक्ति मन से वचन से कर्मों से कृष्ण की सेवा कर रहा है वो हर अवस्था में दिव्य है, यानी कि बाह्य रूप से वो बद्ध लग सकता है लेकिन कृष्ण की सेवा करने में रत होने के कारण वो मुक्तावस्था में रहता है। और अगर इसी वो चेतना में रहता है कृष्ण के सेवक के रूप में, तो अंततोगत्वा वो भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। दूसरा, प्रभुपाद बड़ा अच्छा बता रहे हैं कि व्यक्ति को कम खाने की आवश्यकता नहीं है, केवल भगवान का प्रसाद खाने का संकल्प ले तो हमेशा तो भगवान का प्रसाद मिलता नहीं है, तो जब भगवान का प्रसाद मिलेगा तभी खाएगा, तो दिन में 2 बार या 3 बार खाकर संतुष्ट रह जाना चाहिए। लेकिन हमें स्पेशली भक्तों को जरूर से ज़्यादा तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अधिक तपस्या हमारा मार्ग नहीं है। बहुत अधिक तपस्या करने से हमारा हृदय जो है वो कठोर हो जाता है, हम अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगते हैं और ये भक्ति का तरीका नहीं है। भक्ति का तरीका है युक्त, यानी कि नियमित रूप से हम खाएं, नियमित रूप से सोएं, नियमित रूप से शरीर की आवश्यकताएं पूर्ण करें ताकि हम भगवान की भक्ति कर सकें। और लास्ट लाइन प्रभुपाद ने बहुत अच्छी बताई है कि इंद्रिय निग्रह के बिना भव बंधन के से निकल पाना संभव नहीं है। जैसे भव बंधन के लिए उसे को आप मान के चलिए कि एक सागर है, तो अगर आप सागर में एक बड़ी बोट पर बैठे हुए हैं तो पार कर जाएंगे, लेकिन 2 बोट्स पर नहीं बैठ सकते। एक जो नाव है वो भोग की है और एक नाव योग की है, तो उसको आप उससे आप बाहर नहीं निकल सकते। एक उदाहरण और दिया जाता है, कोई कपड़ा है, धोती है मान लीजिए, और उसमें गांठ बांध दी गई, तो गांठ को टाइट करने का तरीका एक है और गांठ को खोलने का तरीका दूसरा है। तो कोई व्यक्ति कहे कि मैं गांठ को खोलूंगा भी और गांठ को खींच के टाइट भी करूंगा, तो कितनी देर में गांठ खुल जाएगी, तो ये सिर्फ ठीक नहीं है। हमें केवल योग करना है जो कि गांठ खोलने का तरीका है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संचय श्रीयन्ते चास्य कर्माणि मुक्त एवात्मनीश्वरे। श्रीमद् भागवत और भगवद्गीता को सुनने से हृदय की जो ग्रंथि है वो धीरे धीरे खुलती है। तो इस योग की पद्धति में लगे रहने के द्वारा ही हमारे हृदय की ग्रंथि खुल सकती है और इसी की क्रिया को यज्ञ की क्रिया कहा जाता है। तो आगे हम चर्चा अगले के दिन करेंगे। हरे कृष्ण।